ஓம் சாந்தி. பாவானே ஹம் சபீ கோ ட்ராமா கா ஜான் தேகர் பஹோத் சீஜோ மேனே சங்கல்ப் கர் தியா. ஆஜ் ஹம் சபீ மில்கே சிந்தன் கரேங்கே ட்ராமா கோ கிஸ் கிஸ் தரஹ யூஜ் கரே, மன் பி சாந்த் ஹோ ஜாயே, சரல்தா ஆ ஜாயே. जैसे बाबा की मुरली थी संडे को, सब कुछ कल्याणकारी है. याद है सभी को? बाबा भी कहता है सब कुछ कल्याणकारी और हम भी मान लेते हैं सब कुछ कल्याणकारी है. पर जैसा बाबा ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया और जैसे हम सब भी जानते हैं, जब परिस्थिति आती है तो कल्याणकारी लगता है या नहीं? तब क्या होता है? तब लगता है कि ये ना हो तो अच्छा है. लेकिन जब संपूर्ण ज्ञान मिल गया और बाबा स्वयं कह रहे सब कुछ कल्याणकारी है, क्योंकि समय भी कल्याणकारी है, बाप भी और हम भी, तो आज कम से कम 8 पॉइंट्स हम निकालेंगे, सभी चिंतन करेंगे, 8-10. ड्रामा को रोज अपने जीवन में कैसे कैसे यूज करें, क्या क्या बातें इसकी गुह्यता की याद रखें. संसार में जो आज तक ज्ञान दिया गया भक्ति में शास्त्रों ने, उसमें आत्मा के बारे में बहुत बातें कही. एक पुस्तक मुझे दी जो बहुत प्राचीन है भारत की, उसमें आत्मा के बारे में वो सब बातें भी कही थी उस ऋषि ने जो बाबा ने हमें बताई. उस ऋषि को विद्वानों ने नास्तिक कह दिया, आस्तिक नहीं माना, नास्तिक कह दिया. तो बहुत सारी बातें आत्मा और परमात्मा के बारे में अंश रूप में भी लिखी गई, लेकिन विश्व ड्रामा के बारे में बहुत सारी चीजें लगभग लोप रही. बाबा ने आकर बहुत विशाल ज्ञान हम सभी को सतयुग से और कलियुगंत संगम युग का दिया और कुछ रहस्य बताए. अब उन रहस्यों को भी ध्यान में लाएंगे और प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे. किसी भी मनुष्य के संगम योगी जीवन की सफलता किस बात में है? किस बात में हम सबके जीवन की सफलता है? निश्चय में. और किसमें बताओ, किसमें? जीवन हमें अपना भी अच्छा लगे, लगे कि ये जीवन सफल हो गया, 84 जन्म सफल हो गए हमारे, इस समय आकर हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो, हमें ईश्वरीय सुख मिलता रहे, हमारा चित शांत रहे. बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो रहा है. व्यक्तिगत जीवन में हर एक के साथ भी होता है, संगठन में भी होता है, दुनिया में भी होता है, सब कुछ होता है. कल परसों बाबा की मुरली कर्मों की गति पर बड़ी हुई थी, सुनी सभी ने? सभी के हिसाब किताब चुक तू करने की ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल है. बाबा ने तो कह दी वो बात, आपने ध्यान दिया हो कि सबका हिसाब किताब ऊपर रहता है. बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा श्री बाबा के पास, तो सबका हिसाब किताब ऊपर रहता है. बाबा अव्यक्त में तो हम सुन चुके हैं, बाबा ने कई बार कहा, बस बाबा तो बटन दबाए सबका सब कुछ जिसका चाहे देख सकता है. इसी को भक्ति में भी कहा कि ऊपर चित्रगुप्त के पास रहता है सबका हिसाब किताब, बहुत बड़ी फाइल है उसके पास, हर एक का लिखा रहता है. लेकिन कैसा सुंदर खेल है, ऑटोमेटिक चलता है. कर्म किया उसका फल मिलना ही है. मेरी एक से चर्चा हो रही थी बहुत अच्छे डॉक्टर से, कर्म और उसका फल, इसको सूक्ष्म रूप से यदि समझने की कोशिश की जाए. मैंने पहले भी कही है ये बात, जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं वो इस पे विचार करें, चिंतन करें, ये एक बड़ी अच्छी बात है. मैं डॉक्टर नहीं हूं इसलिए सब कुछ मुझे पता नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, जैसी भावना रखते हैं, सब कर्म जो हम सब जानते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, चाहे कानों से हो, आंख मुख से हो, वो सब हमारे ब्रेन में भी, ब्रेन में, स्थूल ब्रेन में तरंगों के रूप में प्रिंट होता रहता है। और हर एक्ट रिएक्ट करेगा, हर कर्म की प्रतिक्रिया होगी ही। हम यहाँ हाथ मारते हैं तो जिसको हाथ मारा दूसरे हाथ को, उसने भी प्रतिक्रिया की, दर्द हुआ, पहली प्रतिक्रिया। ब्लड में कई तरह की चेंज हुई होगी, जोर से चोट लग गई, हर कर्म का की प्रतिक्रिया होती है। तो जो वेव्स ब्रेन में छप गई उसका भी रिएक्शन होगा, वो कर्म का फल है। कब होगा वो रिएक्शन ये कोई जान नहीं सकता, कब उसके अनुकूल चीजें मिल जाएं और वो तरंग जो अंदर छप गई वो रिएक्ट करे, प्रतिक्रिया करे, इसको तो कोई जान नहीं सकता। किसी का पहले हो जाता है, किसी का बाद में होता है। जिसके नहीं होंगे वो बिल्कुल अंत में होगा, जिसको धर्मराजपुरी कहेंगे, केवल मानसिक सजाओं के रूप में जो आत्मा भोगेगी। तो हम सभी ड्रामा के इस गुह्य ज्ञान को जानते हुए, मैंने इन सब चीजों पे तब से बहुत अच्छा चिंतन किया। एक विदेश के अच्छे डॉक्टर ने मेरे से अचानक प्रश्न पूछा, हु डिजाइन्स द ब्रेन, ब्रेन को कौन बनाता है, कौन इसको स्वरूप देता है। मेडिकल साइंस के अनुसार तो माँ बाप, लेकिन एक बिल्कुल कम बुद्धि वाली माँ के गर्भ से एक बुद्धिमान बच्चे का जन्म होता है, एक बहुत बुद्धिमान माँ बाप से बहुत कम बुद्धि वाले बच्चे का जन्म हो जाता है। हम आत्मा की बात को तो जानते हैं, इन सब में आत्मा के वाइब्रेशंस ही मुख्य काम करते हैं, शरीर की रचना में भी, ब्रेन की रचना में भी। तो ड्रामा का बहुत गहरा ज्ञान दिया है बाबा ने। पहली बात, हम कौन हैं ड्रामा में, एक्टर्स हैं, हीरो एक्टर्स हैं। एक्टर के साथ हीरो एक्टर जोड़ दें, हीरो शब्द जोड़ दें, हम हीरो एक्टर्स को सबसे पहला जो हम प्रयोग करेंगे कि मुझे अपने पार्ट का आनंद लेना है, वही एक्टर सफल होगा ना। जो अपने पार्ट का खुद आनंद ले तो सब आनंद लेंगे। एक गीत गाने वाला खुद आनंद न ले रहा हो गीत गाने वाले का तो सुनने वाले बोर हो जाएंगे ना। उसको खुद एंजॉय करना है अपने गाने को। डांस करने वाला कोई भी अपने डांस को खुद एंजॉय कर रहा हो तो सारे देखने वाले भी भाव विभोर हो जाएंगे। मैं एक्टर हूँ, हीरो एक्टर हूँ, मुझे अपने पार्ट को एंजॉय करना है, इसका आनंद लेना है, ठीक है, अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है। पहली बात, अपने पार्ट को एंजॉय करना, बहुत बड़ी बात है, इससे तो पूरी क्लास भी हो सकती है। अपने पार्ट को एंजॉय करना, कभी कभी मनुष्य दूसरों को देखकर अपने पार्ट के एंजॉयमेंट को छोड़ देता है। इनका बड़ा अच्छा भाग्य है, काश ये मेरा भी होता तो बहुत अच्छा होता। तो जो अपना मिला हुआ है उसका आनंद भी नहीं ले रहे हैं। जैसे किसी को बहुत अच्छा मकान हो लेकिन पड़ोसी को उससे भी अच्छा हो, वो रोज उसके सुंदर मकान को देखकर परेशान रहता हो, अपने मकान का सुख भी भूल जाए, ऐसा इस संसार में बहुतों के साथ हो रहा है। सभी चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह, जहां हम हैं गरीबी में हैं, बीमार हैं, कम बुद्धि है, देखने में अच्छा पार्ट नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, और कोई हल्की बात है, अब बुद्धिमानी इसमें कि उसी में रहते हुए जीवन को एंजॉय करें, उसका आनंद लें। आकांक्षाएं जिन्हें मनुष्य कहते हैं, तृष्णाएं जिसे कहते हैं, जो मनुष्य को अपने पार्ट का आनंद नहीं लेने देती, इससे हम जरा ऊपर निकल जाएं। जो मिला है वो बहुत ज्यादा है। क्या मिला है, क्या मिला है, स्वयं भगवान। सोचो अगर हम इस नशे में आ जाएं तो हमारी गरीबी का कोई महत्व रहेगा? हमें लगेगा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, स्वयं भगवान मिले, साथ दे रहा है, हमारा साथी बन गया ना। इस एंजॉयमेंट से जीवन का आनंद लेंगे। सभी सोचेंगे, फिर आपके सामने संकल्प रख रहा हूँ, हर एक अपने जीवन को देखकर विचार करे, मुझे अपने जीवन को कैसे एंजॉय करना है। बिजी लाइफ है तो भी एंजॉय करे। पिछली कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर युगल मेरे से मिला, जान लिया है, वो जो बहन थी वो एमडी का एग्जाम दे रही है, अभी अभी फाइनल होना है मार्च में। उसकी लड़की किसी हायर कंपटीशन दे रही है, कोई हायर एजुकेशन के लिए। कहा हम दोनों ही बहुत टेंशन में हैं आजकल, क्या करें, दोनों को एग्जाम देना है, दोनों का उसी एग्जाम पर कैरियर निर्भर करता है, हम दोनों ही टेंशन में हैं, क्या करें। तो पहली तो सिंपल बात मैंने उनको भी कही कि टेंशन में रहने से बौद्धिक क्षमता नष्ट होती है। ये यदि आप टेंशन में रहेंगे तो उस लक्ष्य को आप नहीं पा सकेंगी जो पाना चाहिए। दूसरी बात मैंने उनको यही कही कि एंजॉय क्यों नहीं करते पढ़ाई को, एग्जाम देने को, जो कुछ है उसका आनंद ले तो सफलता भी आनंदकारी होगी। हम सब भी सीखना है, ये सीख लें, कितना भी बिजी लाइफ है, हमें टाइम नहीं मिलता, और कुछ सिचुएशन हमारे सामने हैं, हम एंजॉय करें, खेल बना दें अपने कर्मों को। और इसका तरीका एक ही हम अपनाएंगे, ये जो हमारी कामनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको छोड़कर जो कुछ हमारे सामने है उसके अनुसार अपने को ढाल लें। कल हम बहुत फ्री थे तो एंजॉय कर रहे थे, आज हम बहुत बिजी हो गए तो ये सोच सोच करके बहुत बिजी हैं, हम अपने आनंद को नष्ट न करें। चेंज करें परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को, उसी अनुसार अपने मन को ढाल लें। बहुत काम, बहुत एंजॉयमेंट हो सकता है, हो सकता है, काम भी बढ़ेंगे, सेवाएं भी बढ़ेंगी। एक समय था मुरली में बाबा ने कहा, टीचर बहनों को तुम्हें एक एक को दस दस सेंटर संभालने पड़ेंगे। बहनी सोचने लगी, एक ही संभालना मुश्किल है, दस संभालने पड़ेंगे, क्या हाल होगा हमारा। अब देखो बहने दस तो छोड़ो, उससे भी ज्यादा संभाल रही है, क्योंकि दूसरे साथी मिल जाएंगे ना, सेवा बढ़ेगी, साथी मिलते जाएंगे, हमें केवल ये कला सीख लेनी है। दूसरी पॉइंट, आगे चलें, ड्रामा की दूसरी पॉइंट बोलेंगी। बहने बोले, बोलो, सिंपल सिंपल बातें आप सब जानते हैं, बोलो बोलो बहन जी, मुख से निकल रहा है, जरा बाहर निकाल लो। राजू तुम ही बता दो, तुम्हारी हंसी अच्छी है, बोलो। बाबा ने ड्रामा की एक बहुत गुह्य बात कही, ड्रामा में जो सीन एक बार हो गया वो 5000 साल में दोबारा नहीं होगा, उसे रिपीट होने के लिए कितना साल लगेगा, 5000 साल। तो मैं एक कोई बात बता रहा था, उसने बहुत अच्छा कहा कि 5000 साल बाद देखेंगे, 5000 साल तो आराम से रहे, कितना अच्छा विचार था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये एक भाई से बात हो रही थी, उसने कहा 5000 साल से पहले वो घटना रिपीट होगी नहीं, तो 5000 साल तक तो हम आनंद लेना। तो ड्रामा चल रहा है, फिल्म भी जो बनती है, मैंने तो देखी नहीं पर लोग कहते हैं सीन जल्दी जल्दी बदलते हैं, ये नहीं कि एक सीन एक घंटा चलता रहेगा, 10 मिनट चलेगा, ऐसा भी नहीं ना, कम से कम चलता है। तो सब कुछ गतिमान है ना, क्या सीखते हैं हम इससे, इसको जाने दें, ये जा रहा है, जाने दें। हमारी आदत क्या है, पकड़ के रखने की, बस इस आदत को जरा ठीक कर लें, फ्लेक्सिबल हो जाएं, जो जा रहा है उसको जाने देना, हम गाड़ी में चलते हैं, ट्रेन में जाते हैं, सीन जा रहे हैं, हम थोड़े सोचते हैं ट्रेन खड़ी करो, बहुत अच्छा सीन है, इसको देखते रहे, सब कुछ बीत रहा है। ऐसा अपने को फ्लेक्सिबल करें, ड्रामा का बहुत अच्छा प्रयोग होगा। चिंतन करें, ड्रामा गतिमान है, इसलिए अपनी गति से चल रहा है, हम इसको रोकेंगे नहीं। ड्रामा रिपीट होता है, तीसरी बात, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये बात परेशान करती है या खुश? ये बात परेशान करती है या खुश? हंस रहे हैं सभी, परेशान करती है। मिश्री लाल जी, खुश करती है, बहनों को खुश करती है। और कोई खराब चीज हो गई हो तो? बहुत प्रश्न आते इस तरह के कि भाई जब बाबा की ये बात सुनते हैं कि ड्रामा रिपीट होता है तो परेशान हो जाते हैं कि जो हो गया वो फिर होगा। भारी चीजें जो हो गई हैं जीवन में, जो दुखदाई चीजें हो गई हैं, जिन्होंने चित्त को भारी किया है, वो फिर रिपीट होगा तो क्या सोचेंगे? रिपीट तो 5000 साल के बाद होगा, कल थोड़ा ही रिपीट होने जा रहा है। और जब रिपीट होगा तब हमें थोड़ा ही पता होगा कि पहले भी हुआ था। दोनों ही चीजें नहीं है, इसलिए रिपीट होगा 5000 साल बाद। इसके लिए ही बाबा ने शब्द बोला नथिंग न्यू। तो हर चीज को नथिंग न्यू से सरल करते चले। मैं कई बार सुनाया है, बहुत लोग ऐसे पत्र भेजते हैं क्वेश्चन कि क्या ड्रामा बदल सकता है मेरा पार्ट। बहुत दुख देखा है इस जीवन में, 5 साल दुखों में व्यतीत किए हैं, अगर उसे याद भी करते हैं तो दिल दहल जाता है। बाबा को ऐसा कहो कि वो सीन दोबारा ना आए और कुछ भले आ जाए। सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि वो घटना दोबारा ना हो तो बड़ा आनंद रहे। तो मेरे को पूछते हैं, एक तो ऐसा परिवार है जो कई बार फोन कर चुका था कि कुछ ऐसा तरीका है कि वो सीन दोबारा ना आए, तो वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रिपीट होगा ही। फिर भी उनकी उत्सुकता देखकर मैंने कहा तरीका है, अगर तुम सचमुच उसे बदलना चाहते हो तो पूरा परिवार आज से ही रोज 8 घंटा योग शुरू कर दो, बस सीन बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? स्थिति बदल जाएगी ना, स्थिति बदल जाएगी तो उस सीन को स्वीकार कर लेंगे, वो भारी नहीं लगेगा। भारी लग रहा है, उसकी छाया अब तक पड़ी हुई है जीवन पर, इसलिए भारी लग रहा है कि वो न हो। दूसरी बात एक बहुत अच्छी है, उसको मैंने बताई, कई जगह ऐसा हुआ है कि यदि वो न होता तो ये भी न होता। ये क्या? परमात्म मिलन। परमात्म मिलन हुआ है, साफ करना था ना आपको, पहले उसके लिए तैयार करना था। एक ऐसा व्यक्ति आया पिछले साल जो बहुत साहूकार, जिसको दिवाला हो गया, उसका भी यही प्रसंग था कि वो न हो तो बहुत अच्छा है। दिवाले के बाद ही तो वो ज्ञान में आया। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास धन संपत्ति होती तो तुम बाबा के पास आते? स्वीकार किया उसने, नहीं आते। तो कितना अच्छा हुआ कि पैसा तुमसे हटा दिया गया और भगवान मिल गया। सस्ता है ना भगवान? अगर 5-10 करोड़ खर्च करके, नुकसान करके भगवान मिल जाए, सस्ता हो गया ना। तो क्यों नहीं इस खुशी में रहा जाए कि जो मिला है उससे बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं है। सब कुछ चला गया, जाने दो, आगे चले। सोचो आप, मैं खुद नहीं बताना चाहता था, और ड्रामा को कैसे यूज करेंगे? ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा रहता है। हम केवल पर्दे को हटाएं, विवेक पूर्वक, मैंपन का त्याग करके। जब हम किसी सीन को स्वार्थ की भावना से देखते हैं तो हमें लगता है ऐसा ना होकर ऐसा हो, जहां हम अपना भला देखते हैं। पर बाबा हमारा भला लॉन्ग टर्म में देखना चाहता है, दूर तक। अगर तत्कालीन भला हमारा हो जाए और लंबे काल तक हमें कष्ट हो वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने कई बार एक बहुत अच्छी बात कही है, कई जगह मैंने सुनी, संदेशों में सुनी, बच्चों के 90% विघन तो बाप नष्ट कर लेते हैं, केवल 10% छोड़ते हैं तुम्हारे लिए। हम समझें इस बात को, 10% तो हमें पार करके अपने को शक्तिशाली बनाना चाहिए ना, तो सब कुछ कल्याणकारी हो रहा है। बाबा ने भी कहा ना, कोई मर गया तो कल्याण है, एक्सीडेंट हो गया तो कल्याण है, नुकसान हो गया तो कल्याण है, हम गिर गए फ्रैक्चर हो गया पैर में तो कल्याण है, किसी ने इंसल्ट कर दी तो कल्याण है कल्याण। अब हम विवेक पूर्वक ध्यान दें, कोई हमारी इंसल्ट करता है, कल्याण कब होगा? जब हम उसके इंसल्ट करने को आधार बनाकर अपनी स्थिति को अचल अडोल कर दे, तो उसका इंसल्ट करना हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। तो हमें अकल्याण की चीज को कल्याणकारी बनाना है अपने अच्छे चिंतन से। किसी ने इंसल्ट की और हमने चिंतन किया कि हमें इसी में अचल अडोल रहना है, उसके इंसल्टिंग शब्दों को ख्याल करना ही नहीं है, उस पर चिंतन करना नहीं है, अपने चिंतन को ईश्वरीय चिंतन की ओर ले चलना है, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा ना। दूसरे के इंसल्ट को सरलता पूर्वक लेना है तो कल्याणकारी हो जाएगा ना। अगर हम इतने सेंसिटिव बन गए, आप सोचो एक उस व्यक्ति की आप स्थिति देखो जो बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव माना बड़ा नाजुक हो गया है, कि मुझे कोई कुछ कहे नहीं तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहे, उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और उसकी स्थिति अच्छी रहती है, वो ठीक है? या एक व्यक्ति फील्ड में रहता है, लोग उसको बोलते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं और वो अपने ज्ञान और योग के बल से अचल अडोल हो जाता है, कौन अच्छा रहेगा? क्योंकि जो व्यक्ति डर रहा है कि मुझे कोई कुछ कहे नहीं तो मेरी स्थिति अच्छी रहे, कहने वाले तो उसे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चाहने से उसे कोई कुछ कहेगा नहीं, उसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, ऐसा हो सकता है कि कोई बिना परीक्षाएं दिए ही आगे बढ़ जाए, एमए कर ले, फिर एमबीए कर ले, फिर पीएचडी कर ले, एग्जाम देना ना पड़े, सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा हो? और अगर ऐसा हो भी जाए तो जब उसको नौकरी मिलेगी वो सफल होगा? सफल बिना एमबीबीएस किए ही डिग्री मिल गई एमडी की, क्या होगा उस डॉक्टर का? दो चार को मार के जेल में रहेगा ना, फिर तो फायदा क्या होगा उसका? हमारी योग्यताओं अनुसार ही हमें सब कुछ मिले, ये एक बहुत अच्छा चिंतन है। हम बिना योग्यता के कुछ भी प्राप्त न करें, जिनको बहुत अच्छा बनना है, जिन्हें महान बनना है, जिन्हें शक्तिशाली बनना है, वो इस तरह चिंतन किया करें, हमें मांग कर कुछ प्राप्त नहीं करना है, अधिकार से सब कुछ पाना है, हमें अपनी योग्यताओं से सब कुछ पाना है, अयोग्यता से नहीं। हमें परीक्षाओं को पास करके शक्तिशाली बनना है, बिना परीक्षा दिए हुए कुछ प्राप्त नहीं करना है, ठीक है चिंतन? तो ड्रामा कल्याणकारी है। और आगे चले, ड्रामा की एक बहुत गुह्य बात, ड्रामा हमें परचिंतन से भी मुक्त करता है। कैसे? ड्रामा का ज्ञान परचिंतन से मुक्त करे। सिंपल सी बात है ना, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, इसका सभी अच्छा प्रयोग करेंगे, परचिंतन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि परचिंतन से क्या नुकसान हो रहा है? दूसरे का चिंतन चल रहा है, पर चिंतन चल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? हमारी आत्मिक शक्तियां नष्ट हो रही हैं, और जो हमारा उल्टा चिंतन चल रहा है उसका उल्टा प्रभाव आत्मा की खुशी को नष्ट कर रहा है। आत्मा की खुशी और शक्तियां नष्ट होती है परचिंतन से। इसलिए बहुत अच्छी तरह ड्रामा की इस बात को याद रखते हुए हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। साथ ही साथ एक और चिंतन अपने से करेंगे, बात करें अपने से, बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। क्या मेरे इस पर चिंतन से उस आत्मा को या मुझे कुछ लाभ होगा? अपने से बात करनी है। क्या ये परचिंतन उस तक पहुंच रहा है, शुभ चिंतन में बदल जाए तो दोनों को फायदा, हमें भी और दूसरे को भी। ड्रामा का ये बहुत सुंदर ज्ञान यदि हम याद रखेंगे, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक की योग्यता के अनुसार उसे पार्ट मिला है। डायरेक्टर किसी एक्टर को पार्ट कैसे देगा? उसकी योग्यता के आधार पर। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि सुप्रीम डायरेक्टर ने हर आत्मा को पार्ट दिया है, तो वो तो गलती नहीं कर सकता ना। उसे तो पैसा देकर भी रिझाया नहीं जा सकता कि मुझे हीरो पार्ट दे दो। बिल्कुल योग्यता के आधार पर सबको पार्ट मिला हुआ है। इसलिए दूसरे के पार्ट से ईर्ष्या न करके हमें अपने मिले हुए पार्ट को ही बहुत अच्छी तरह बजाना चाहिए। जैसे ड्रामाज में, फिल्म में किसी एक एक्टर को छोटा सा पार्ट दे दिया, लेकिन वो उसको बहुत सुंदर बजाए तो डायरेक्टर क्या करेगा अगली फिल्म में? उसको और अच्छा पार्ट देगा ना, उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। और किसी को झाड़ू लगाने का ही पार्ट दिया गया हो, लेकिन उसने आधा किचरा छोड़ा हो, आधा लगाया हो, क्या छोटा सा पार्ट दिया, तो डायरेक्टर सोचेगा फेथफुल आदमी नहीं है, इसको अच्छा पार्ट नहीं देना चाहिए। हम सब भी अपने पार्ट को जितना सुंदर बजाएंगे, हमारे पार्ट में और निखार आता जाएगा, हमें लगेगा हम भी हीरो पार्टधारी हैं। और आगे चले, इस ड्रामा के लिए दो बातें बहुत गुह्य कही हैं बाबा ने। अपने चिंतन, अपने चित्त को शांत रखने के लिए इन बातों को भी बिल्कुल सामने रख ले। एक कहा, नो क्वेश्चन, क्या क्यों कैसे नहीं, नो क्वेश्चन। जो कुछ हो रहा है वही एक्यूरेट है। इससे भी गहरी बात कही, आश्चर्य भी नहीं, किसी भी पार्ट को आश्चर्यवत होकर भी नहीं देखो। बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखना चाहते हैं वो इस पर काम करेंगे, आश्चर्यवत भी नहीं। जो कुछ हो रहा है, नेक्स्ट बात इससे ही जुड़ी हुई जो बहुत गहरी है, जिसको याद रखने से हम अनेक संकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, भगवान वाच है ये। मुरली आ चुकी है ये रिपीट होकर 3 मास पहले। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है या नहीं, बोलो क्या कहेंगे, सत्य है या नहीं, वही होना चाहिए। सोच लो अच्छी तरह, वही होना चाहिए। और गहरी बात है, माताएं क्या समझती हैं, वही होना चाहिए जो हो रहा है। देख लो अपने अपने जीवन की रोज की घटनाओं को देखकर, रोज एक फिल्म बन रही है ना हर एक के जीवन में, रोज की एक फिल्म है। जीवन की फिल्म तो छोड़ो, रोज कई बातें आती हैं। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, कितने सीन आते हैं सामने जिसको देखकर हम चाहते हैं ये ना हो। मैं देखता हूँ बहुतों को आजकल सिवावा पर गुस्सा आता रहता है, कितना रॉयल गुस्सा होगा, बाबा ये क्यों नहीं कर रहा है। मैं तो कह देता हूँ वे राय लिख के भेज दो ना बाबा को, एक अपनी अपनी राय लिखो और बाबा को भेज दो, बाबा भी मुस्कुराता होगा ना। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान वाच, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा। आज की मुरली की लास्ट लाइन याद करो, लास्ट लाइन बिल्कुल याद प्यार से पहले की। इस संसार में दुखों के पहाड़ गिरने हैं और सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। क्या सुंदर लैंग्वेज है भगवान की भी। इस संसार में अब आने वाले समय में दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान के जो तुम्हारे दुख हैं ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, पहाड़ गिरेंगे। अथाह दुख, दुखों की जैसे बरसात होने लगेगी, दुख ही दुख, और सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। ऐसी अचल अडोल अवस्था हम बनाएं कि जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है उससे साक्षी होकर देखें, तब हम बाप समान बनेंगे, तब हमारी स्थिति संपूर्णता के समीप पहुंचेगी। तो बहुत अच्छी बात है, सभी विचार करेंगे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मुझे अपने मन को शांत रखना है। सभी अपने से बात करें यहाँ, केवल ज्ञान चर्चा और चिंतन तक ये बात न रह जाए। इन सब बातों का प्रयोग करके हम अपने मन को शांत रख दें, अच्छी मेहनत का विषय है, और देखें कि हमारा शांत मन क्या क्या करता है, हमारी साइलेंस पावर क्या क्या चमत्कार करती है, ये एक्सपेरिमेंट करें। सभी अपने जीवन को इस तरह एक सुंदर लेबोरेटरी बना दें, प्रयोग करें ये मन को शांत रखने से क्या क्या होता है। क्योंकि जो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, जो बहुत ज्ञान युक्त है, वही मन को शांत कर सकते हैं। ठीक बात है या नहीं? नहीं तो अनेक चीजें भूल जाती हैं। एक कह रहे थे भाई कि बाबा ने आज कितनी अच्छी बात कही, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, पर भाई जब परीक्षा आती है सब भूल जाता है। याद रहे परीक्षा के समय? एक बच्चे ने बहुत मेहनत की हो सारा साल और परीक्षा हॉल में जाकर बैठा, पेपर देखते ही सब कुछ भूल गया। क्या होता है सब जानते हैं ना, बहुतों के साथ ऐसा होता है, डर से भूल जाते हैं, जो याद था वो भी भूल जाते हैं, कुछ का कुछ उत्तर देने लगते हैं। आपने देखा होगा जो हायर कंपटीशन है जिन्होंने दिए हो, उनमें तो पेपर आ जाता है ना, उस पे यस नो टिक ये करना होता है ना, तो उनसे पढ़ाई नहीं जाता, घबरा इतने जाते हैं कि पढ़ रहे ऊपर की लाइन दिख रही है नीचे की, ठीक ऊपर पे लगाना लग गया नीचे घबराहट से। परीक्षा के समय निर्भय रहना, परीक्षा के समय अपने में विश्वास को कायम रखना, डगमग न होना, धैर्य चित्त होकर रहना, ये बहुत बड़ी कला है। सभी सीख लें, परीक्षाएं तो सबको देनी है, क्योंकि गॉडली मिशनरी जो है हिसाब किताब चुक चुक करने की, वो तो तेजी से चालू होगी ही, सबको साफ करके बाबा को ले जाना है। हम सभी बहुत चीजों को जानते हुए साक्षी होकर चित्त को शांत रखना सीखें। याद रखेंगे दो बातें सभी के ख्याल में रहें, जब हमारा मन शांत होता है तो क्या क्या होता है, हमसे बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, ये बात भूलना नहीं है। जो अपने चित्त को शांत रख लें, समझो वो इस संसार को बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं। फिर जो कुछ हमारे नेचुरल संस्कार हैं, प्योरिटी शांति सुख आनंद, वो वाइब्रेट होता है हमसे, वो चारों ओर फैलता है, जो संसार की आत्माओं को मदद करता है। इसके लिए ही एक दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर विचार बना लें। एक विचार है ये, कुछ भी हो जाए मुझे संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना है। चिंतन करें, इस पे दृढ़ता लाएं। दो बातें हैं यहाँ भी, एक ये है कि कुछ भी हो जाए अवस्था नहीं बिगाड़नी है, बहुत काम आएगी ये धारणा, अपने अंतर मन में इसको समाते चलें, बहुत कुछ होता रहेगा, जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, जो नहीं चाहेंगे वो होगा, जो कभी सोचा नहीं वो परीक्षा जीवन में आ जाएगी। ये सब के साथ होना है, मानसिक रूप से अपने को तैयार करें, कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं बिगाड़नी है। ये संकल्प ही बहुत बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है कह दिया, हमने सुन लिया, खराब बात थी, हमने खराब सुनी, उसने खराब बोली, ये सब ठीक है, लेकिन स्थिति नहीं बिगाड़नी है, वो हमारी चीज है, वो हमारे कंट्रोल में है। अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना, अपसेट नहीं करना है, चिड़चिड़े नहीं हो जाना है, ये नहीं बस मन में फिर तूफान चलने ही लगे। आजकल क्या हो रहा है कि मन में जब ज्यादा तूफान चलते हैं तो बहुतों को एक ही संकल्प आता है, ये जीवन अच्छा नहीं है, भगवान क्या मिला, दुखी हो गए हम तो, बोलते हैं लोग, मेरे आगे बोलते रहते, नाजुकपन आ गया आत्माओं में, बहुत भूल गए कि हमें परीक्षा देकर बहुत शक्तिशाली बनना है। आज भी बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम्हें पढ़ाकर स्वर्ग का स्वराज दिलाने के लिए, जिनको स्वराज देना हो, जिनको स्वराज लेना हो, सोचो वो कमजोर होंगे, वो सोचेंगे कि हमें कोई कुछ कहे नहीं, प्राइम मिनिस्टर सोचता है अखबारों में मेरी गिलानी न हो, सोनिया गांधी सोचती है ये तो बहुत गिलानी कर रहे हैं, मुझे पद छोड़ देना चाहिए, प्रेसिडेंट ने सोचा कि लोग बहुत बुराई कर रहे हैं, क्या करूंगी प्रेसिडेंट बनकर, इन्होंने तो शांति बंद कर दी, सोचा। कलयुग के लोग भी यदि इतने शक्तिशाली रहते हैं कि यदि कुछ पाना है तो कुछ सुनना ही पड़ेगा, क्या हम नहीं सोच सकते, हमें सब कुछ पाना है, वहां तो बहुत थोड़ा है, अगर हमें सब कुछ पाना है तो सब कुछ सुनना ही पड़ेगा, जो सुन ले वो महान, और जो न सुने, जो न सुने वो तो कमरे में बंद होके बैठ जाए, कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन कमरे में बंद हो जाएंगे, हम अकेले भी हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अपने ही संकल्प रूपी मच्छर भी तो हमें शांत नहीं होने देंगे, कैसे मनुष्य अकेला रहेगा, उसको फील्ड में रहना है। तैयार हैं सभी, कुछ पाना है तो सुनना है, बोलो बहने तैयार हैं, या सुनाने के लिए सब तैयार हैं, सुनने के लिए नहीं, सुनाना तो सभी जानते हैं संसार में, लेकिन सुनना, जो ज्यादा सुनाते हैं दूसरों को उनमें सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए जिनको सुनने की शक्ति और सहन शक्ति बढ़ानी है उन्हें सुनाने की शक्ति को जरा कम यूज करना चाहिए, फटाफट सुना देते हैं ना, किसी ने कुछ गलती की सुनानी चाहिए एक बात, सुनाएंगे दस, मौका अच्छा मिल गया है सुनाने का, अंदर जो था वो बाहर निकालने का, इससे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। तो सभी ये लक्ष्य बना लें, न स्थिति को बिगाड़ना है, न संकल्प शक्ति को नष्ट करना है, करेंगे ड्रामा को यूज। और अंतिम बात, ड्रामा का सबसे सुंदर सीन अब हमारे सामने है, केवल सामने नहीं हम भी उसमें हैं। कितना अच्छा है कि जब भगवान संसार बदलने आया हम भी उसके साथ हैं, केवल देखने वाले नहीं एक्टर हैं, उसने हमें अपना साथी बना लिया है, उसने हमें चुन लिया है कि मेरे योग्य तुम हो, आ जाओ मेरे साथ। इस बात का आनंद ले हम बहुत ज्यादा, तो अपनी वर्तमान प्राप्तियों को देखते हुए इस ड्रामा में, प्राप्तियों की बात आजकल स्लोगन और वरदान में आ रही है, अपनी प्राप्तियों की एक लिस्ट बना ले सभी। आज ही एक भाई ने लिखी लिस्ट, मुझे कहा, मैंने उससे पूछा कि क्या क्या मिला है बाबा से, हंसने लगा, क्या मिला है, मगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मिला है बाबा से, क्या मिला है। फिर हम दोनों बैठे, और हमने लिस्ट तैयार की बाबा से क्या क्या मिला है। कितनी लिस्ट रही होगी वो? 50। बहुत 25 तो बहुत पावरफुल चीजें जो हमें बाबा से मिली हैं, अगर हमें वो याद रहें तो हम सदा अपने इस भाग्य की खुशी में रहेंगे ना। कितना सुंदर ड्रामा है, ड्रामा के अंत में भगवान का साथ मिल गया, जो कल्पनाएं थी वो साकार हो गई, जो चारों युगों में कभी नहीं देखा था वो देखने को मिल गया। जब दादी ने शरीर छोड़ा आसपास के दिनों में, मैंने यहाँ भी वो बात कही थी, आपको भी उसमें नफा रहता होगा कि देखो हम कितनी सुंदर बातें देख रहे हैं कि दादी ऊपर पहुंची तो प्रकृति के 5 तत्व देव स्वरूप में स्वागत करने आ गए। कितनी सुंदर बात थी, दादी विदाई ले रही है वतन से, जो इस संसार में कोई नहीं जान सकता और देख सकता वो सब हमने जाना और देखा ना, कैसे बाबा ने उनको विदाई दी। प्रकृति के तत्व भी विदाई देने आ गए, तो देवगण भी विदाई देने आ गए, तो ब्राह्मण भी विदाई देने आ गए, और स्वयं भगवान सामने है। कहा तुम तो बड़े भाई हो, उठो गले मिलो। क्या सुंदर सीन देखा ना सभी ने, यहाँ से गले मिले और लोप कर दिया। तो जो कुछ चारों युगों में नहीं देखा नहीं सुना, जो तीनों लोकों में तीनों कालों में संभव नहीं, वो सब हम देख सुन रहे हैं ना, एक्ट कर रहे हैं। अपने इस महान पार्ट की खुशी में आ जाएं सभी। अब भी देखेंगे ना बहुत कुछ, 6 मास देखने को मिलेगा, वो सब कुछ देखेंगे जिसके लिए तपस्वियों के नयन तरसते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि रात दिन मंत्र जाप करते हैं, वो सब हम देखेंगे और सुनेंगे। तो ऐसा अपना सुंदर भाग्य इस ड्रामा में देखते हुए सभी ड्रामा का यूज करें। कितनी बातें हो गई मुझे पता नहीं, 8 तो हो गई होंगी, हो गई। 5 स्वरूपों का अभ्यास चालू है या छूट गया? जिस जिसका चालू है हाथ उठाएं। अच्छा, वेरी गुड, 50%, बहुत अच्छी बात है। जिसका चालू नहीं है वो हाथ उठाएं जरा। ठीक है, माताओं ने उठाए नहीं। ट्रेनिंग भट्टी की कुमारियां भोजन करके ट्रेनिंग सेंटर में दादी रतन मोहिनी जी से मिलेंगी, तो सभी इस पर ध्यान देंगे बहुत ज्यादा। जो नहीं कर रहे हैं, हो सकता वो कम कर रहे हो, 2 बार कौन कर लेते हैं सारे दिन में, 8 बार, अच्छा 4 बार, अच्छा ठीक है, बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे हमारी चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में नए नए अनुभव होते हैं। इसको ढीला नहीं करना है, बाबा रिजल्ट पूछेगा आते ही, होमवर्क दिया था किस किस ने किया है। वैसे वो पूछे न पूछे इनाम तो साथ साथ मिल जाता है, साथ साथ श्रेष्ठ स्थिति और ईश्वरीय सुख इसका इनाम मिल जाता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह लगन से, जिसका छूटा हो, बाबा ने क्या कहा था, दिन में छूट जाए तो रात को पूरा करके ही सोना है। 10 मिनट दे दो एक्स्ट्रा, 1-1 मिनट में भी 5 स्वरूप करके 10 बार करके ही सो, तो अगले दिन बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। ओम शांति। अभी सभी एक ही स्वरूप में बैठेंगे, हम सभी फरिश्ते हैं, कमल आसन पर हैं, सभी कमल आसन पर आ जाएं। देखें अपने फरिश्ते स्वरूप को, मैं चमकती हुई आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ। कमल आसन पर लाल लाइट कर दें, कमल आसन पर ऊपर से सर्वशक्तिवान से निकली हुई 8 शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। बार बार इस संकल्प को याद भी कर लें और अनुभव करें, शक्तियां मुझ में समा रही हैं।